بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है दोस्तों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है, फरवरी की 21, रजब की 30 और इस्फंद माह की दूसरी तारीख। कार्यक्रमों में आप विगत की ही भांति पहले विश्व समाचार सुनेंगे, विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। उसके उपरांत हम आपको आज मातृभाषा दिवस के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे और हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, parstoday.ir/hi। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। तुर्की में नए शक्तिशाली भूकंप में कई लोग मारे गए। सीरिया पर इसराइल के हमले को हिजबुल्ला ने मानवता के खिलाफ बताया है। बाइडेन की यूक्रेन यात्रा से रिपब्लिकन नाराज हैं। पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी पश्चिम पर है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के फार्स प्रांत में आज भूकंप आया। रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया है कि इस प्रांत में भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। रेड क्रिसेंट सोसाइटी की वेबसाइट के अनुसार फार्स प्रांत की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सीईओ ने बताया कि मंगलवार की सुबह फार्स और हुर्मुज़गान प्रांतों की सीमा पर स्थित लालिस्तान शहर में 5.2 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। उन्होंने बताया कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सीईओ का कहना था कि प्रभावित इलाके में बचाव टीमों को भेज दिया गया है।
सोमवार को तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्र में एक बार फिर कम गहराई वाला भूकंप आया है, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों अन्य घायल हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, जबकि इसका केंद्र तुर्की का हताए प्रांत था। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर का कहना है कि तुर्की के सबसे दक्षिणी प्रांत हताए में सिर्फ 2 किलोमीटर की गहराई में इस भूकंप का केंद्र था। तुर्की की आपदा और आपातकाल एजेंसी अफाद ने बताया कि स्थानीय समयानुसार रात 8:04 पर यह भूकंप आया। इस भूकंप के बाद भी दर्जनों हल्के झटके यानी आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। इससे पहले 6 फरवरी को आए भूकंप में अब तक 44,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि तुर्क सरकार ने अब मलबे के नीचे दबे लोगों में से जिंदा लोगों को खोजने का काम रोक दिया है।
तुर्की में भूकंप पीड़ितों की सहायता करने वाली इसराइल की टीम ने इस देश की प्राचीन धरोहरें चुरा ली। रशिया टुडे के अनुसार इसराइल की वो टीम जो तुर्की में भूकंप पीड़ितों की सहायता करने गई थी, उसने मौका मिलते ही इस देश की प्राचीन धरोहरों की चोरी कर ली। इसराइल की इस टीम के सदस्य अंताकिया के सेनेगॉग से प्राचीन पांडुलिपियां चुरा कर ले गए। तुर्की के अंताकिया के एक प्राचीन सेनेगॉग में अति प्राचीन हस्तलिखित प्रतियां चुराने के कारण जायोनी शासन की बहुत बदनामी हुई है। तुर्की के संचार माध्यमों और क्षेत्रीय देशों ने इसराइल के इस काम को भूकंप के दुरुपयोग का नाम दिया है। सबका कहना है कि इसराइल द्वारा तुर्की के सिनेगॉग से प्राचीन पांडुलिपियां चुराना बहुत ही निंदनीय काम है, क्योंकि उन्होंने तुर्की की भूकंपग्रस्त स्थिति का दुरुपयोग किया है। प्राचीन पांडुलिपियां चुराने से जब इसराइल की पूरी दुनिया में बदनामी हो गई, तो तेल अवीव ने इस बदनामी को रोकने के लिए इन पांडुलिपियों को तुर्कियों को वापस कर दिया।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोधी आंदोलन हिजबुल्ला ने सीरिया पर इसराइल के हवाई हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया है। रविवार को तड़के इसराइल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया के दक्षिणी इलाके में बमबारी की थी, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। हिजबुल्ला के उप महासचिव शेख नईम कासिम ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि सीरिया पर इसराइल का हमला और आम नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है। इसराइल ने यह हमला इसी समय में किया जब इस देश में 6 फरवरी को आने वाले शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही हुई है और पीड़ितों के लिए सहायता अभियान जारी है। शेख नईम कासिम ने जायोनी शासन को एक वैश्विक जानवर करार दिया और कहा कि जब भी इस शासन पर आंतरिक दबाव बढ़ता है, वो इस तरह के अमानवीय अपराधों को अंजाम देता है।
इसराइल में गृह युद्ध की शुरुआत को लेकर हिजबुल्ला के महासचिव के बयान पर जायोनी शासन के प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया जताई है। हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने हालिया एक भाषण में अमेरिका और इसराइल को संबोधित करते हुए कुछ समीकरण पेश किए थे और इसराइल में जारी राजनीतिक संकट पर टिप्पणी भी की थी। इसराइलियों पर हसन नसरुल्लाह के बयान के पड़ने वाले प्रभाव के दृष्टिगत नेतन्याहू ने अपनी साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग में कहा, नसरुल्लाह ने यह बयान इसराइलियों की राष्ट्रीय भावना और एकजुटता को कमजोर करने के लिए दिया है। जायोनी प्रधानमंत्री ने सफाई पेश करते हुए कहा कि इसराइल में कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसराइली आपस में भाई भाई हैं और भाई भाई आपस में नहीं लड़ते।
अमरीकी रिपब्लिकन्स ने जो बाइडन की यूक्रेन यात्रा को अमरीका का अपमान बताया है। अमरीका के रिपब्लिकन्स का कहना है कि राष्ट्रपति बाइडन अमरीका के करदाताओं के पैसे को यूक्रेन में नष्ट कर रहे हैं। जॉर्जिया की सीनेटर ने ट्वीट किया है कि बाइडन ने अमरीका के स्थान पर यूक्रेन का चयन किया है। वे अमरीकी जनता को यूक्रेन पैसा भेजने के लिए बाध्य कर रहे हैं। मैं किसे बताऊँ कि अमरीकी बाइडन से कितना नाराज हैं। एक अन्य सीनेटर स्कैन पेरी के अनुसार आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह है कि यूक्रेन की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए राष्ट्रपति बाइडन यूक्रेन चले जाते हैं, किंतु यही काम वे अमेरिका की सीमाओं के लिए नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य रिपब्लिकन नेताओं ने भी बाइडन की यूक्रेन यात्रा की निंदा की है।
रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार पश्चिम को बताया है। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि पश्चिमी देश ही यूक्रेन युद्ध के मुख्य जिम्मेदार हैं। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध के एक साल पूरा होने से पहले अपने टेलीविजन संबोधन में इसका जिम्मेदार पश्चिमी शक्तियों को बताया। अपने इस भाषण में पुतिन ने यूक्रेन तथा रूस के संदर्भ में पश्चिम की नीतियों की भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध आरंभ होने से पहले ही पश्चिम ने यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई आरंभ कर दी थी। उन्होंने यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के बारे में कहा कि इसको रूसी हितों की सुरक्षा के लिए ही अंजाम दिया गया है। अपने संबोधन के एक अन्य भाग में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि डोनबास क्षेत्र की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मैंने बहुत कूटनीतिक प्रयास किए। उन्होंने कहा कि इस बारे में पश्चिमी नेताओं के झूठे वादे थे। पश्चिम ने यूक्रेन की सेना को प्रशिक्षण दिया और उनको हथियार उपलब्ध करवाए। पुतिन के अनुसार पश्चिम अब तक यूक्रेन को $150 अरब के हथियार भेज चुका है।
ताइवान ने अमरीका के साथ सैन्य सहयोग में विस्तार का फैसला कर लिया है। ताइवान के राष्ट्र प्रमुख ने यह फैसला कर लिया है कि वे अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को विस्तृत करेंगी। मंगलवार को अमेरिका के कुछ सांसदों के साथ भेंट में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हम अमेरिका और उसके घटकों के साथ सैन्य सहयोग इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि क्षेत्र में विस्तारवाद का मुकाबला किया जा सके। उनका कहना था कि विगत की तुलना में इस समय ताइवान अमेरिका और उसके घटकों से अधिक निकट है क्योंकि हम विस्तारवादी नीतियों और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग करना चाहते हैं।
यूरोपीय संघ ने म्यांमार में 9 अधिकारियों और सरकारी विभागों तथा कंपनियों सहित 7 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बढ़ती हिंसा, मानवाधिकारों के हनन और सुरक्षा खतरों को लेकर यूरोपीय संघ ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय संघ ने म्यांमार के अधिकारियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने और संपत्तियों को जब्त करने का फैसला भी किया है, जिनमें म्यांमार के ऊर्जा मंत्री और शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। सरकारी विभागों तथा कुछ कंपनियों की संपत्तियों को भी यूरोपीय संघ ने सील कर दिया।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अपने 80 वर्षीय बूढ़ी माँ के साथ जियारत के लिए मक्का जाना चाहती हैं, लेकिन भारत सरकार उनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कर रही है। जब संबंधित अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाने से भी समस्या का समाधान नहीं निकला तो उन्होंने अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की गुहार लगाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने जयशंकर को इस बारे में चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पासपोर्ट के मुद्दे पर पिछले 3 साल से इंतजार कर रही हूं ताकि अपनी 80 साल की मां को मक्का की यात्रा पर ले जा सकूं, लेकिन पासपोर्ट अधिकारी मुझे पासपोर्ट जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर सीआईडी ने इस पर रोक लगाई हुई है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 20 फरवरी को एक आधिकारिक बयान जारी करके अवैध रूप से फिलिस्तीन के कब्जा किए गए इलाकों में जानी बस्तियों के विस्तार की निंदा की है। इस परिषद के अंतिम प्रस्ताव के 6 साल बाद यह पहला कदम है जो विश्व समुदाय ने इसराइल की गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ उठाया है। ईरान के खिलाफ राजनीतिक दबाव जारी रखते हुए पश्चिमी देशों ने एक बार फिर ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के बारे में निराधार दावे किए और इस बार उन्होंने दावा किया कि ईरान में 84% संवर्धित यूरेनियम की पहचान की गई है। शिवसेना में जो राजनीतिक विवाद आरंभ हुआ है वो खत्म होने के बजाय नया रूप धारण करता जा रहा है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनावी चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया है।
तीर कमान वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है।
सुरक्षा परिषद के बयान में कहा गया है कि अवैध बस्तियों के निर्माण की इसराइल की योजना 1967 के प्रस्ताव के आधार पर 2 देशों के समाधान के लिए खतरनाक है। आखिरी बार दिसंबर 2016 में ओबामा प्रशासन के दौर में सुरक्षा परिषद ने ज़ायोनिस्ट शासन के खिलाफ प्रस्ताव 23-34 पारित किया था जिसमें अवैध बस्तियों के निर्माण और विस्तार को रोकने के लिए कहा गया था। साथ ही मिसम अब्बास
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 20 फरवरी को एक आधिकारिक बयान जारी करके अवैध रूप से फिलिस्तीन के कब्जा किए गए इलाकों में ज़ायोनी बस्तियों के विस्तार की निंदा की है। इस परिषद के अंतिम प्रस्ताव के 6 साल बाद ये पहला कदम है जो विश्व समुदाय ने इसराइल की गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ उठाया है। हालांकि अमरीका ने 2016 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर मतदान से दूरी इख्तियार की थी। सुरक्षा परिषद के इस बयान में कहा गया है कि अवैध बस्तियों के निर्माण की इसराइल की योजना 1967 के प्रस्तावों के आधार पर दो देशों के समाधान के लिए खतरनाक है। आखिरी बार दिसंबर 2016 में ओबामा प्रशासन के दौर में सुरक्षा परिषद ने ज़ायोनी शासन के खिलाफ प्रस्ताव 2334 पारित किया था जिसमें अवैध बस्तियों के निर्माण और विस्तार को रोकने के लिए कहा गया था। ओबामा प्रशासन इस प्रस्ताव पर होने वाले मतदान से दूर रहा था। हालांकि इसराइल के पारंपरिक सहयोगी माने जाने वाले यूरोपीय देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था जिससे इसराइल का गुस्सा भड़क उठा था। फिलिस्तीनी इलाकों में अमानवीय और अवैध निर्माण की नीति इतनी अनुचित और अतार्किक है कि ज़ायोनी शासन के पश्चिमी सहयोगियों के पास भी उसका विरोध करने और विश्व समुदाय का साथ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ ध्यान योग्य बिंदु यह है कि 20 फरवरी को जारी होने वाले सुरक्षा परिषद के बयान का वाशिंगटन ने भी समर्थन किया है, यानी ये बयान सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों की सहमति से जारी किया गया है। हालांकि यूएई ने कहा था कि इस मुद्दे पर वो इससे ज्यादा सख्त बयान पेश नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में अमेरिका उसे वीटो कर सकता था। यूएई द्वारा पेश किए गए मसौदे में फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों में अवैध बस्तियों के निर्माण और विस्तार को तुरंत रूप से बंद करने की मांग की गई है। सुरक्षा परिषद में ज़ायोनी शासन के खिलाफ आधिकारिक बयान का पारित होना दर्शाता है कि इसराइल के रणनीतिक साझेदार के रूप में भी अमेरिका इसका विरोध नहीं कर सका क्योंकि इस मुद्दे पर विश्व समुदाय पूर्ण सहमत था। इससे स्पष्ट है कि धीरे धीरे ही सही ज़ायोनी शासन के पाप का घड़ा भर रहा है और विश्व समुदाय उसके अमानवीय अपराधों के खिलाफ एकमत हो रहा है। फिलिस्तीन के प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने सुरक्षा परिषद से मांग की है कि फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के अधिकारों के प्रति वो तटस्थ न रहे। यहाँ एक और बिंदु ध्यान योग्य ये है कि अब ज़ायोनी शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों का विरोध खुद ज़ायोनियों के बीच बढ़ने लगा है। इसके अलावा अवैध ज़ायोनी शासन अपने इतिहास के सबसे भयानक राजनीतिक संकट से गुजर रहा है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
अमेरिकी समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों ने पिछले सप्ताह ईरान में 84% संवर्धित यूरेनियम का पता लगाया है। इस खबर के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने घोषणा की है कि एजेंसी ईरान में यूरेनियम संवर्धन के स्तर के बारे में मीडिया रिपोर्टों से अवगत है। समीक्षा पेश है साथ ही अख्तर अब्बास।
ईरान के खिलाफ राजनीतिक दबाव जारी रखते हुए पश्चिमी देशों ने एक बार फिर ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के बारे में निराधार दावा किया है और इस बार उन्होंने दावा किया है कि ईरान में 84% संवर्धित यूरेनियम की पहचान की गई है। अमरीकी समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों ने पिछले सप्ताह ईरान में 84% संवर्धित यूरेनियम का पता लगाया है। इस खबर के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने घोषणा की कि एजेंसी ईरान में यूरेनियम संवर्धन के स्तर के बारे में मीडिया रिपोर्टों से अवगत है और एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ईरान के साथ एजेंसी के सत्यापन के परिणाम के बारे में बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सूचित करेंगे। ईरान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को यूरेनियम संवर्धन के स्तर के बारे में सूचित किया है और नवीनतम मामले में यूरोपीय और अमरीकी अधिकारियों के बुरे विश्वास और पश्चिमी देशों द्वारा JCPOA के उल्लंघनों और इस पर अमल में टालमटोल के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया था कि देश के परमाणु प्रतिष्ठानों में 60% शुद्ध यूरेनियम के संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूजों को कॉन्फिगर कर दिया गया है। ईरान में अब भी 60% से अधिक यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बारंबार पश्चिमी देशों और ज़ायनी अधिकारियों के दबाव में ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के बारे में अनेक दावे किए हैं, लेकिन ये दावे ईरान और एजेंसी के बीच सहयोग के रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ईरान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सकारात्मक बातचीत की है और साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि यह सहयोग राजनीतिक दबावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ नए दावे से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक बार फिर पश्चिमी मीडिया को तकनीकी और गोपनीय जानकारी प्रदान करके ईरान के खिलाफ एक दबाव के साधन में परिवर्तित हो चुकी है, जो इस संस्था की प्रतिष्ठा और स्थिति को कम करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ईरान और एजेंसी के बीच सहयोग पर नकारात्मक प्रभाव का कारण बन सकता है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रवक्ता ने भी ब्लूमबर्ग समाचार एजेंसी में प्रकाशित सामग्री को काला और तथ्यों को विकृत करने वाला करार दिया है और बल दिया है कि दुर्भाग्य से एजेंसी अहंकारी देशों और ज़ायनी शासन के दबाव का एक उपकरण बन गई है, जबकि एजेंसी का कर्तव्य सदस्य देशों को अपनी पेशावराना स्थिति का ख्याल रखना है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को दुरुपयोग होने से बचाना है।
चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनावी चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यह सौदा 2000 करोड़ रुपए में किया गया है।
शिवसेना का नाम और चुनावी चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत ने इस संदर्भ में याचिका स्वीकार कर ली है और इस मुद्दे पर सुनवाई कल होगी। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुनवाई आज नहीं हुई। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उद्धव गुट के असेंबली दफ्तर पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है, यदि कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो शिंदे गुट ऑफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद अब संसद का शिवसेना दफ्तर भी शिंदे गुट को सौंप दिया गया है, जिसकी जानकारी लोकसभा सचिव ने एक पत्र द्वारा दी है। चुनाव आयोग की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनावी चिन्ह मिलने के बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का प्रयास तेज कर दिया है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने भी कार्यकारिणी की बैठक कर स्थिति का मुकाबला करने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की। शिवसेना में बगावत के बाद शिंदे गुट ने अलग होकर भाजपा से गठबंधन किया था और फिर उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार गिरने के बाद भाजपा के समर्थन से शिंदे ने अपने नेतृत्व में सरकार गठित की थी। उधर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। राउत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2000 करोड़ रुपए का एक शुरुआती आंकड़ा है और ये पूरी तरह सच है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के करीबी एक बिल्डर ने ये जानकारी साझा की है।
तीर कमान को हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय। 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने जहां चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया और कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, वहीं उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर तंज करते हुए कहा कि वे देश के लोगों को आपस में लड़ाकर राज करना चाहते हैं। अब सबकी नजर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर टिकी है कि वह चुनाव आयोग के फैसले पर मोहर लगाता है या इस फैसले को रद्द करता है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
तो श्रोताओ, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अब पेश है विशेष कार्यक्रम मातृभाषा दिवस के संबंध में।
दोस्तों, मातृभाषा विश्व दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं रविश जैदी और मरियम मेहदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस घोषित किया है। मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जो मनुष्य अपने माँ बाप और परिवार के सदस्यों से सीखता है। वास्तव में मातृभाषा वो भाषा होती है जिसको बच्चा अपने माता पिता और निकटवर्तियों से सीखता है और बोलता है। ये वो भाषा होती है जिसमें इंसान बचपन गुजारता है और सब कुछ इसी भाषा में सीखता है।
कुछ शोधकर्ता ये कहते हैं कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो अपनी मातृभाषा से अवगत होता है। बाद में जब वो पैदा होता है तो उसी भाषा को अपने इर्द गिर्द सुनता है। इसी भाषा के साथ वो पलकर बड़ा होता है। अपनी मातृभाषा ही के माध्यम से मनुष्य जहां पर अपने इर्द गिर्द के वातावरण को समझता है, इसी के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। लोगों की अधिकांश यादें उसकी मातृभाषा से जुड़ी होती हैं।
दुनिया में इस समय 6000 से अधिक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। इन 6000 भाषाओं में मात्र कुछ 100 जबानें ही आधिकारिक रूप में पहचानी जाती हैं, जिनके माध्यम से शिक्षा का क्रम जारी है। इंटरनेट की दुनिया में 100 से भी कम भाषाएं प्रयोग की जा रही हैं। भाषा विज्ञान के जानकारों का कहना है कि एक शताब्दी के भीतर विश्व में प्रचलित भाषाओं में से आधी जबानें खत्म हो जाएंगी।
किसी एक भाषा के समाप्त होने का अर्थ होता है उसकी संस्कृति, पहचान और सामाजिक तथा व्यक्तिगत निर्भरता का खत्म हो जाना। जब बड़ी संख्या में भाषाएं भुला दी जाएंगी या फिर समाप्त हो जाएंगी तो विश्व में संस्कृति विविधता भी दिखाई नहीं देगी। जब कोई एक भाषा समाप्त होती है तो उस भाषा के बोलने वालों की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, परंपराएं और इतिहास आदि सब कुछ मिट जाता है। इस प्रकार से वो समाज अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और अनुभवों को खो बैठता है। ये वे चीजें हैं जिनकी जरूरत आगामी पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है।
मातृभाषा विश्व दिवस के इतिहास में अगर हम जाना चाहें तो पता चलता है कि वो 21 फरवरी सन 1952 की ओर जाता है। इसी दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका के छात्रों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ढाका में विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई पर प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे थे। वे बंगाली भाषा को तत्कालीन पाकिस्तान की दूसरी सरकारी भाषा मनवाना चाहते थे। बाद में 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस घोषित किया।
राष्ट्र संघ ने सन 2022 से लेकर 2032 तक के एक दशक को अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय भाषा का दशक बताया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग इस बात की ओर ध्यान दें कि किस प्रकार से हमारे बीच से भाषाएं जुदा होती चली जा रही हैं। इनको बचाने के लिए हमको स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने होंगे। कहीं कहीं पर मातृभाषा और मातृभूमि को एक साथ प्रयोग करते हैं। भाषाओं से इंसान के व्यक्तित्व को भी पहचाना जा सकता है।
यूनेस्को का मानना है कि मातृभाषा लोगों से केवल संपर्क स्थापित करने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि उसका महत्व इसलिए भी है कि उसी के माध्यम से हम अपने पूर्वजों से भी बात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति की मातृभाषा पीढ़ियों के बीच संपर्क का पुल और अपनी पहचान को दूसरों तक पहुँचाने का माध्यम है। भाषा किसी भी संस्कृति का मूल स्तंभ होती है। संस्कृतियों ने भाषा के आधार बनाकर ही रूप धारण किया है।
जब तक कोई भी संस्कृति भाषा के विस्तार और विकास को सुरक्षित रखती है, उस समय तक वो हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रहती है। दूसरी बात यह है कि संस्कृतियों का आदान प्रदान भी भाषाओं के माध्यम से ही संभव है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भाषाओं को दूसरे स्थानों पर पहुंचाकर अपनी संस्कृति को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है।
औपनिवेशिक युग के दौरान वर्चस्ववादियों ने भाषा के माध्यम से अपना वर्चस्व स्थापित किया। उन्होंने अपनी भाषा थोपकर लोगों को अपने नियंत्रण में कर लिया। समाजशास्त्री मिलान कुंदेरा ने कहा है कि किसी एक राष्ट्र को समाप्त करने का एकमात्र मार्ग पहले उसकी याददाश्त या स्मरण शक्ति को मिटा देना है। ऐसा करने से उसकी संस्कृति, भाषा और किताबों को नष्ट किया जा सकता है। स्थिति में उस राष्ट्र के लिए नई किताबें लिखने वाले चाहिए, क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसको वो भुला बैठा। वर्तमान समय में भाषा ही नर्म युद्ध का एक माध्यम है।
सन 1992 में ब्रिटेन के एक भाषाविद रॉबर्ट फिलिप्सन ने पहली बार भाषाई साम्राज्यवाद के सिद्धांत की बात कही थी। उन्होंने अपनी किताब लिंग्विस्टिक इम्परियलिज्म में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के साथ ही साथ भाषाई साम्राज्यवाद का भी उल्लेख किया है। वे अंग्रेजी भाषा को साम्राज्यवाद के विस्तार का एक हथकंडा मानते हैं। रॉबर्ट फिलिप्सन का कहना है कि ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा विश्व के अन्य देशों में अंग्रेजी भाषा का प्रचार एवं प्रसार एक प्रकार से इन देशों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के अर्थ में है।
ये एक ऐसा नर्म युद्ध है जिसके माध्यम से एक ओर तो भाषा फैलाने वाले की संस्कृति उस देश में फैल जाएगी और दूसरी ओर वहाँ की स्थानीय भाषाएं या तो बहुत कमज़ोर हो जाती है या फिर वे समाप्त हो जाएंगी। भाषाई साम्राज्यवाद के संदर्भ में ईरान के एक भाषाविद मेहदी सालेही कहते हैं कि यूनेस्को की ओर से आगामी समय में दुनिया में भाषाओं के विलुप्त होने या समाप्त होने की घोषणा वास्तव में गंभीर चेतावनी है। उनका ये कहना है कि शक्ति या सत्ता के क्षेत्र में भाषा के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि अमेरिका में घटने वाली 11 सितंबर की घटना के बाद इस देश में अमेरिकी भाषा संघ ने एक आपातकालीन बैठक में अरबी तथा फारसी भाषाओं को प्रतिस्पर्धी भाषाएं बताते हुए उनसे मुकाबला करने पर बल दिया था। अरबी और फारसी भाषाओं का मुकाबला करने के लिए उस समय $114 मिलियन का बजट विशेष किया जा चुका है।
हालिया कुछ वर्षों के दौरान कई देशों के नेताओं ने ये प्रयास किया है कि स्थानीय मातृभाषाओं को बढ़ावा देकर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव का मुकाबला किया जाए, ताकि लोग अपनी संस्कृति और पहचान की रक्षा कर सकें। विश्व के वे देश जहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती हैं, उनका प्रयास ये रहता है कि किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पहचान दी जाए और साथ ही समस्त स्थानीय या मातृभाषाओं के फलने फूलने की भूमिका प्रशस्त रहे।
सीधी सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति उस देश में रहता हो जहां पर कई भाषाएं बोली जाती हैं, अगर वो अपनी राष्ट्रीय भाषा को छोड़कर केवल अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करता है तो आगे चलकर वो बहुत सी चीजों से वंचित रह जाएगा। इस प्रकार से वो भविष्य में कई प्रकार की समस्याओं में घिरता चला जाएगा। ईरान ऐसा देश है जहां पर कई जातियां वास करती हैं। यही कारण है कि यहां पर कई भाषाएं और एक्सेंट पाए जाते हैं। ईरान में लगभग 70 भाषाएं और एक्सेंट पाए जाते हैं, जैसे तुर्की, आजरी, कुर्दी, गीलकी, लूरी, बलोची, अरमनी और अरबी। इनमें से सबकी अपनी अलग संस्कृति और परंपराएं हैं। हर एक का अपना अलग साहित्य, कहावतें, कविताएं, कहानियां और कथाएं तथा लहजे हैं। इन सारी भाषाओं ने किसी न किसी रूप में ईरान की राष्ट्रीय भाषा फारसी को प्रभावित किया है, जिससे वो अधिक समृद्ध हुई है।
वास्तव में फारसी भाषा हमेशा ही ईरानियों की राष्ट्रीय पहचान रही है, जिसने पूरे राष्ट्र को एक दूसरे से जोड़ रखा है। ये फारसी भाषा ही है जो राष्ट्रीय एकता का कारण बनी है। ईरान के एक लेखक डॉक्टर साहेब उज़मानी के अनुसार ईरानियों को ये बात पता चल चुकी थी कि वे लोग जो अपनी मातृभाषा में सोच और बोल नहीं सकते, वे मजबूर होकर विदेशी भाषाओं का रुख करते हैं। इस प्रकार के लोग भाषा को लेकर आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना का शिकार रहते हैं। वे हमेशा ही सांस्कृतिक पिछड़ेपन का अनुभव करते रहते हैं। इन बातों के दृष्टिगत मनुष्य को हमेशा अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपने सुना मातृभाषा दिवस के बारे में, और अब पेश है सभा का अंतिम कार्यक्रम कुरानी किस्से।
قرآن قصے
دوستو، کارکرم قرآن قصے کی ایک انہیں کڑی کے ساتھ آپ کی سیما میں اپستھت ہیں مریم مہردادیا اور رویش زیدی کا سلام سویکار کیجیے۔
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरह अहज़ाब की 23वीं और 24वीं आयतें कब नाजिल हुई थीं। दूसरी हिजरी कमरी में पवित्र रमज़ान महीने में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। ये घटना इस्लाम और मुसलमानों के संबंध में निर्णायक सिद्ध हुई। इस घटना के बाद उस समय का जो अरब समाज था इस्लाम के बारे में, उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। वो घटना जंगे बद्र थी। मुसलमानों और काफिरों के बीच होने वाली पहली जंग का नाम जंगे बद्र था। इस जंग में मुसलमानों को विजय मिली और काफिरों को पूरी पराजय का सामना करना पड़ा।
इस जंग में विजय से मुसलमानों को बहुत खुशी हुई और वे अपने मुसलमान होने पर गर्व कर रहे थे। जो मुसलमान बीमार होने, बूढ़ा होने और बच्चे होने जैसे कारणों से इस जंग में भाग न ले सके, वे अपने आप को कोस रहे थे कि काश इस जंग में भाग लिया होता। जिन लोगों ने जंगे बद्र में भाग नहीं लिया था, उनमें से एक अनस बिन नज़्र था। वो एक जाना माना बहादुर और योद्धा था और काफिरों के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक व व्याकुल था।
संयोग से जब जंगे बद्र हुई तो वो यात्रा पर चला गया। अनस महान ईश्वर से दुआ करता था कि वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो। वह अपनी दिली आकांक्षा को रण क्षेत्र में ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مہان ایشور سے دعا کی کہ اس کے بعد جو بھی کافروں کے ساتھ یدھ ہوگا اس میں وہ بھاگ لے گا اور اپنے جیون کی انتم سانس تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے گا۔
ادھک سمے نہیں گزرا تھا کہ جنگ احد پیش آ گئے۔ قریش کے کافروں نے بھاری تیاری کے ساتھ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ کی ایک وجہ یہ تھی کہ شام سے مکہ جانے کا ویاپار کا جو راستہ تھا اس پر مسلمانوں کا نینترن ہو گیا تھا۔ اس آدھار پر کافروں نے بڑی سینا اور بڑی سینک تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو دوسرے یدھ کے لیے بادھیہ کر دیا۔
بہرحال انس بن نظر وہ پہلا انسان تھا جو کافروں سے لڑائی کے لیے نکل پڑا۔ وہ اپنی شہادت کے بارے میں سوچتا تھا، وہ یدھ میں وجے کے علاوہ کچھ اور سوچتا نہیں تھا۔ مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند تھے۔ جنگ احد میں آرم میں ان کا پلہ بھاری رہا اور یہاں تک کہ وجے کے نکٹ پہنچ گئے تھے، پرنتو مسلمانوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آدیش کی اوگیہ کی، جس کی وجہ سے یدھ کا نقشہ ہی بدل گیا اور یدھ کافروں کے ہت میں سماپت ہوا۔
جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں مسلمان پیغمبر اسلام کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنگ ہو ہی رہی تھی کہ پیغمبر اسلام کے قتل کے افواہ پھیلا دی گئی۔ اس افواہ کا پھیلنا تھا کہ کچھ مسلمانوں کا منوبل گر گیا اور جنگ کرنے کا کارن و کارک ہی سماپت ہو گیا۔ یہاں تک کہ کچھ مسلمان منافقوں کے سرگنہ عبداللہ بن ابی کے ذریعے ابو سفیان سے شرن پتر لینے کے پریاس میں تھے۔
انس بن نظر نے جب یہ درش دیکھا اور عمر اور طلحہ جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابی پیغمبر اسلام کے مارے جانے کی بات کر رہے ہیں اور جنگ کرنے سے رک گئے ہیں، تو اس نے ان لوگوں کی بھرتسنا کی اور جیون کی انتم سانس تک جنگ جاری رکھنے کے لیے کہا، پر یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس کے بعد انس بن نظر نے ان لوگوں کو سمبودھت کر کے کہا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر انس نے کہا کہ اگر پیغمبر اسلام کا قتل کر دیا گیا ہے تو ان کے بعد جینے کا کیا فائدہ، اٹھو اور لڑو اور اسی راستے میں مارے جاؤ جس میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے ہیں۔
اس کے بعد انس نے مہان ایشور سے کہا، ہے پالنہار، میں ان کی باتوں سے تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور میں کافروں سے بیزاری چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انس بن نظر نے اپنے اندر ادھک شکتی کا آبھاس کیا اور پوری طاقت سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑا اور کئی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کافروں نے اس پر حملے کر کے اسے گھائل کر دیا تھا۔ اس کے شریر اور چہرے سے خون بہہ رہا تھا، پرنتو وہ بری طرح گھائل ہو گیا تھا، اس طرح سے کہ اب اسے کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا۔
مسلمانوں میں کیول سعد بن معاذ تھا جو انس بن نظر کو پہچان رہا تھا۔ اس نے سعد سے کہا کہ ہے سعد، ہر شڑ مجھے سور کی سگند آ رہی ہے، مانو میں اسے دیکھ رہا ہوں اور مجھے لیش ماتر بھی سندے نہیں ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں جیون کی انتم سانس تک لڑ رہا ہوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وچن دیا تھا اس کے پرتی کٹیبدھ ہوں۔ یہ باتیں کہنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور پوری بہادری کے ساتھ دشمنوں پر ورج پات بن کر ٹوٹ پڑا اور اس کے کچھ دیر بعد اس نے اپنی ہاردک اکشا کو پراپت کر لیا، یعنی شہید ہو گیا۔
انس کے شریر پر اتنے گھاو لگے تھے اب کوئی بھی اسے نہیں پہچان رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا سگا بھتیجا بھی اسے نہ پہچان سکا اور بعد میں وہ بھی شہید ہو گیا۔ بعد میں انس بن نظر کی بیٹی نے اپنے باپ کو اس نشان سے پہچانا جو اس کی انگلی پر تھا۔ بعد میں گنا گیا تو پتا چلا کہ اس کے شریر پر 80 گھاو تھے جو جنگ احد میں شہید ہونے والوں میں ابوتپورو تھا۔
दोस्तों, ये वो अवसर था जब महान ईश्वर ने पवित्र कुरान के सूरह अहज़ाब की 23वीं और 24वीं आयतें नाजिल की। इन आयतों में महान ईश्वर मोमिनों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि मोमिनों में से ऐसे पुरुष हैं जो वादा अल्लाह ने उनसे किया है उसे पूरी सच्चाई के साथ पूरा करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो शहीद हो गए और कुछ शहादत की प्रतीक्षा में हैं, और उन्होंने अपने विचार व आस्था को नहीं बदला ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई के कारण प्रतिदान दे, और अगर वो चाहे तो मुनाफिकों को अजाब व दंड दे या उन्हें माफ़ कर दे। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला दयावान है।
पवित्र कुरान के कुछ व्याख्याकार इन आयतों को पैगंबर इस्लाम के चाचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब से संबंधित मानते हैं, जबकि कुछ अन्य व्याख्याकारों का मानना है कि इन आयतों का संबंध जंगे ओहदे के दूसरे शहीदों से है, जबकि दूसरे व्याख्याकारों का मानना है कि ये आयतें किसी शहीद से विशेष नहीं हैं बल्कि ये सार्वजनिक है, और ये आयतें उन लोगों के संबंध में हैं जो जंगे बद्र और अहद में शहीद हो चुके हैं, और इसी प्रकार इन आयतों में वे मुसलमान भी शामिल हैं जो शहादत के इंतज़ार में हैं।
रोचक बिंदु ये है कि तफसीर साफ़ी में इन आयतों की व्याख्या में लिखा है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफ़ादार साथियों में से जब भी कोई रण क्षेत्र की ओर जाता था तो कहता था कि यह पैगम्बर इस्लाम के बेटे आप पर सलाम हो। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनमें से हर एक के सलाम का जवाब देते और पवित्र कुरान की उस आयत की तिलावत करते थे जिसमें महान ईश्वर कहता है कि मोमिनों में से कुछ शहीद हो गए और कुछ शहादत के इंतजार में हैं।
इस आधार पर कहा जा सकता है कि पवित्र कुरान की इन आयतों में सारे मोमिन शामिल हैं, चाहे वे आयत उतरने के समय के मोमिन हों या उसके बाद के समय के मोमिन हों। दूसरे शब्दों में पवित्र कुरान की हर आयत किसी समय या किसी विशेष व्यक्ति से विशेष नहीं है बल्कि पवित्र कुरान की अधिकांश आयतें सार्वजनिक हैं और उनमें हर वो मुसलमान शामिल है जिसमें वर्णित विशेषताएँ मौजूद होंगी। मिसाल के तौर पर महान ईश्वर ने इन आयतों में मोमिनों की दो अलामतें बयान की है। पहली ये कि वे सच्चे होते हैं यानी सदैव सच बोलते हैं, और दूसरी अलामत यह है कि वे जो वादे अल्लाह से करते हैं उस पर डटे रहते हैं।
दोस्तों, रिवायतों में है कि अधिक नमाज पढ़ने वालों और रोज़ा रखने वालों को मोमिन नहीं समझना चाहिए बल्कि ये देखना चाहिए कि जिसे हम मोमिन समझ रहे हैं वे सच बोलते हैं या नहीं, और इसी तरह देखें कि वो अमानत अदा करता है या नहीं। आज हमारे समाज में बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्हें दूसरे मोमिन समझते हैं जबकि वो झूठ बोलने में संकोच से काम नहीं लेते हैं और समय पर नमाज भी पढ़ते हैं।
रोचक बात यह है कि हमारे समाज में ऐसे भी नमाजी हैं जो दूसरों से कर्ज लेकर भूल जाते हैं और देने में आनाकानी करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं, मगर हमारे समाज के भोले भाले लोग इस प्रकार के मुसलमानों को मोमिन समझते हैं। मोमिन की एक अलामत यह है कि उसे जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करता है और गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है, जबकि समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें आम लोग मोमिन समझते हैं जबकि मोमिन नुमा लोग कंजूसी से काम लेते हैं और वे ज़रूरतमंद इंसान पर न केवल अपना माल खर्च नहीं करते हैं बल्कि उन्हें कर्ज तक नहीं देते हैं।
सच्चे मोमिन की एक अलामत यह है कि स्वर्ग और नर्क पर वो इस प्रकार विश्वास रखता है कि मानो उसने स्वर्ग को अपनी आँखों से देखा है और स्वर्ग की नेमतों से लाभान्वित हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि नेक काम को छोटा समझकर नहीं छोड़ना चाहिए और नर्क पर उसका विश्वास इस प्रकार होना चाहिए मानो नर्क को उसने अपने आँखों से देखा है और बुरा व गलत कार्य करने पर उसे जो दंड मिलेगा उसका आभास नरक में कर रहा है, यानी वो महान ईश्वर से डरता है और गुनाहों और पापों से दूर भागता है।
सच्चे मोमिन की एक अलामत यह है कि वो अपना समय केवल उस ज्ञान के हासिल करने में बिताता है जो उसके लिए लाभदायक हो। वह उन ज्ञानों और उन कार्यों में अपना समय व्यतीत नहीं करता है जो उसके लिए लाभदायक नहीं होते हैं। इसी प्रकार वो अर्थहीन बातों से भी बचता है। सच्चा मोमिन न तो दूसरों से अर्थहीन बातें करता है और न ही दूसरों की अर्थहीन बातों को सुनता है।
सच्चे मोमिन की एक अलामत यह है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता और सभी उसकी तरफ से संतुष्ट होते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसी तरह सच्चे मोमिन की एक अलामत यह है कि उससे केवल दूसरों को भलाई पहुँचती है, यानी दूसरे उससे सिर्फ भलाई की उम्मीद रखते हैं। वह अपने अधिक नेक काम को भी काम समझता है, जबकि दूसरों के थोड़े से नेक काम को भी बहुत अधिक समझता है। सच्चे मोमिन की एक अलामत यह है कि वो ज्ञान हासिल करने से कभी नहीं थकता। इसी तरह वो कभी भी लोगों की मांगों से नहीं थकता है और यथासंभव उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। सच्चे मोमिन की एक अलामत यह है कि वो अपने आप को किसी से भी बेहतर नहीं समझता है और वो जिसे भी देखता है यही कहता है कि ये मुझसे बेहतर है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम था कुरानी किस्से। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। तो दोस्तों, इसी के साथ सभा यहीं पर संपन्न होती है। खुदा हाफिज। Thank you.